You are listening to What is the Logic by Shisham Agarwal.
दोस्तों हमें लगातार बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि बच्चों के एग्जाम टाइम शुरू हो गया है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे। बहुत बार ऐसा महसूस करते हैं कि पढ़ाई करते हैं पर उनको जो नॉलेज है वो रिटेन नहीं हो पा रही। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक है अपने फोकस को बढ़ाने का, अपने ध्यान को बढ़ाने का। तो आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा पॉडकास्ट लेके आई हूँ जो एक तरह का टेक अवे है। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो न केवल बच्चे अपितु बड़े लोग भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं या अपना काम करते हैं और उनको फील होता है कि रोजमर्रा की परेशानियों के साथ वो अपना फोकस नहीं जमा पा रहे या अपना ध्यान नहीं जमा पा रहे, तो किस तरह से आप इन विधियों का प्रयोग कर कुछ ही समय में बहुत अच्छा फल या बहुत अच्छा लाभ देख सकते हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम वो भी डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में आपके फेवरेट पॉडकास्ट व्हाट इज अ लॉजिक में। मेरे साथ मैं हूँ डॉक्टर शीशम अग्रवाल और व्हाट इज अ लॉजिक मेरे 12 साल के शोध का निचोड़ है। तिलक क्यों लगाया जाता है, मंदिर का घंटा एक मिक्स्ड अलॉय से क्यों बनाया जाता है, मंदिर का घंटा एक विशिष्ट स्थान पर ही क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, घंटी का क्या लॉजिक है, अगर आप घर में मंदिर बनाते हैं तो किस स्थान पर बनाना चाहिए, मंदिर क्यों जाना चाहिए, हमें खड़ाऊ क्यों पहने और दूसरी लेदर की चप्पल क्यों नहीं पहननी चाहिए, लेदर का प्रयोग हमें क्यों नहीं करना चाहिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमें क्यों नहीं पहननी चाहिए, आप घर में हवन कैसे कर सकते हैं और घर में हवन करने के लाभ क्या हैं, घी के लाभ क्या हैं, घी का दिया क्यों जलाना चाहिए, माला किस प्रकार से हमें उच्चारण करनी चाहिए, किस प्रकार के जाप होते हैं, मानसिक वाचिक उपांशु और इन जापों को किस तरह से करना चाहिए, माला करते समय किन नियमों का ध्यान करना चाहिए, माला करने के क्या लाभ होते हैं, व्रत करने के क्या लाभ होते हैं, 16 संस्कार क्या होते हैं और इस प्रकार की बहुत सारी अन्य जानकारी हम आपके समक्ष लगातार लाते जा रही हैं। लगभग 2 साल से हमारा ये पॉडकास्ट आपके समक्ष आ रहा है और आपका प्यार देखते ही बनता है। जिस तरह से लोग हमें डीएम करते हैं, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और बिना विलंब के शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। दोस्तों आज हम बात करेंगे फोकस की, ध्यान की। ध्यान जब हम कहते हैं तो ध्यान केवल एक मेडिटेशन की प्रक्रिया नहीं है। ध्यान जो अगर आप एक मॉडर्न डे वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे, न्यू एज साइकोलॉजी से कनेक्ट करेंगे, न्यू एज रिलीजन से कनेक्ट करेंगे या न्यू एज स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे, तो ध्यान का मतलब है माइंडफुलनेस। आप कोई भी कार्य करिए, अगर वो माइंडफुलनेस से करेंगे तो आप अपने आप में ज्यादा अवेयर फील करेंगे। बहुत सारी साइकोलॉजिकल अप्रोचेस हैं जो आजकल बहुत ही पॉपुलर हो गई हैं, जैसे कि DBT, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो इस तरह की थेरेपी में भी माइंडफुलनेस के बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है और लगातार डॉक्टर्स भी अपने क्लाइंट्स को न्यूरोसाइंस में, न्यूरोसाइकोलॉजी में कोशिश कर रहे हैं कि माइंडफुलनेस की तरफ ले जाएं। माइंडफुलनेस मतलब अगर आप एक पानी का ग्लास भी पी रहे हैं तो आप उसको माइंडफुली पीजिए। आप देखिए कि आप स्वयं ग्लास को उठा रहे हैं और धीरे धीरे कर पानी पी रहे हैं और उस वक्त अगर आप कुछ और न सोचें और केवल अपनी इस प्रक्रिया पर ध्यान दें। आप जब चल रहे हैं तो देखिए अपने आप को माइंडफुली चलते हुए, आपकी लेग्स के एक्शंस को महसूस करिए, अपनी मोटर मूवमेंट्स को महसूस करिए। कई बार कुछ ऐसी भी टेक्निक्स बताई जाती हैं जो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके अंदर जो एक विचारों का जमावड़ा सा बन जाता है, लगातार आपका थॉट प्रोसेस जो बहुत स्पीड से भागता रहता है वो भी क्षण हो जाता है। जो हमारी नॉर्मल वेकिंग स्टेट है, जो हमारी नॉर्मल कॉन्शियसनेस की अवस्था है जिसमें हम केवल 10% अपनी एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब केवल 10% ऑफ द कॉन्शियस ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं, उसको बीटा अवस्था कहते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे थॉट्स हमें लगातार व्याकुल करते हैं। केवल 1% ऐसी एनर्जी है जो कि रियली में प्रोडक्टिव है, बाकी सारी जो एनर्जी है एक तरह से मान लीजिए वेस्ट ही होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नकारात्मक विचार या एक वेस्टफुल विचार या मेरे जिस तरह के ब्रेन के न्यूरल पाथवेज बन गए हैं जो हमें मजबूर करते हैं लगातार एक ही तरह के विचारों में घुले मिले रहने के लिए, वो ट्रिगर होते हैं और लगातार हम एक ही तरह से एक ही साइकोलॉजिकल पैटर्न में सोचने लग जाते हैं और उसी तरह के ब्रेन वेव्स हम मेरे ब्रेन में बन जाते हैं, उसी तरह के न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, उसी तरह के रास्ते हमारे ब्रेन में बन जाते हैं। तो उन सबको तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस तरह के न्यूरल पाथवेज को तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज ये है कि अगर आप इस कमरे में बैठे हैं या किस भी कमरे में बैठे हैं, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पे हो, आप लगातार उस कमरे में ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना शुरू कर दीजिए। आप एक एक ऑब्जेक्ट को देखिए और लगातार काउंट करना शुरू कर दीजिए। दो तीन चार अलग अलग ऑब्जेक्ट को लगातार अपनी नजरों के साथ काउंट करिए, और जब तक आप 50 नंबर तक पहुंचेंगे या 100 नंबर तक पहुंचेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका जो थॉट पैटर्न है वो टूट गया है और आपके जो विचार हैं वो आपको जिस भी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं या न्यूरल पाथवे जो आपको ट्रिगर कर रहा है उसमें एक तरह की ब्रेक के जा जाती है, उसमें एक तरह का पॉज आ जाता है। अगर आप दिन में कई बार इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि जब आपको किसी प्रकार की एंजाइटी होती है या बेचैनी होती है या स्ट्रेस होता है वो धीरे धीरे करके कमतर होने लग जाएगा, वो धीरे धीरे करके घटने लग जाएगा। ये एक बहुत ही सरल टेक्निक है। इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स हैं जो कि हमारे वैदिक ग्रंथों में भी दी गई है, और उसमें से एक टेक्निक है त्राटक। त्राटक मतलब कि ध्यान लगाना किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या किसी एक पर्टिकुलर चीज पे या किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर अगर हम ध्यान लगाते हैं और एक टक अगर हम उसको देखते रहते हैं तो भी हमारे मस्तिष्क के अंदर जो ऊर्जा हमारी आंखों से हमारे शरीर से बाहर निकलती है वो बाह्य वाहिनी होने की बजाय वो हमारे अंदर ही वापस जमा होने लग जाती है और हमारा जो ध्यान है वो और ज्यादा विकसित होता है। जो सारी ऊर्जा हमारी वेस्ट हो रही है वो वेस्ट होने की बजाय वापस हमारे शरीर में आने लग जाती है और बहुत स्पीड से हमारे ब्रेन सेल्स को भी मल्टीप्लाई करती है और हमारे शरीर में जो प्रजातंतु हैं उनको भी एक्टिवेट करती है। हमारे अंदर जो छोटी छोटी बहुत सारी वाहिनियां हैं उनके अंदर जो प्राण ऊर्जा है उसका और ज्यादा सृजन करती है, उनको खोलती भी है। बहुत सारी ऐसी नर्व्स हैं दोस्तों जो हमारे ब्रेन में हैं जहां पर ग्रे मैटर फ्लो होना चाहिए या पहले फ्लो होता था, अब नहीं होता बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। अगर आप लगातार कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे या आप त्राटक का प्रयोग करेंगे तो वो वाहिनियां भी आपकी खुल जाएंगी, वो ब्रेन नर्व्स भी आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। इसमें जो एक बहुत ही सरल टेक्निक है त्राटक की वो ऐसी है कि आप दीवार पर एक बिंदु बना लीजिए, एक ब्लैक डॉट आप बना सकते हैं एक फेल्ट पेन से, और थोड़ा सा दूर बैठ जाइए उस पॉइंट से। आप कम से कम 2 फीट की दूरी पर या 3 फीट की दूरी पर उस पॉइंट से बैठ जाइए और आप उस पॉइंट को एक टक देखिए। अगर आपकी आंखों में पानी आता है तो आप तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आप आंखों में पानी आने के बावजूद उस पॉइंट को देखते हैं तो आंखें कमजोर हो सकती हैं। तो इनिशियली हमें ये नहीं करना, 30 सेकेंड्स तक उस पॉइंट को देखिए और फिर धीरे धीरे करके इसकी अवधि बढ़ाइए। अगर आंखों में पानी आता है तो कुछ समय के लिए आंखें बंद कर लीजिए, फिर वापस पुनः आप उस पॉइंट को देखिए और एक टक देखते रहिए जब तक कि दोबारा पानी नहीं आता। रोज सुबह 5 मिनट के लिए अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में आप इस एक्सरसाइज को करते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपका जो ब्रेन है उसकी मेमोरी शार्प हो गई है। न केवल शॉर्ट टर्म मेमोरी अपितु लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बच्चों की बड़ों की बहुत शार्प हो जाती है। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ एज हमेशा काम करता है। इस तरह से और भी त्राटक हैं जहाँ पर लोग एक दीपक की लौ को देखते हैं, जैसे आप एक घी का दिया जला दीजिए उसके अंदर की जो नीली लौ होती है उसको देखते हैं, परंतु इनिशियली के लिए अगर आप केवल इस बिंदु त्राटक को करें तो ये ज्यादा सरल भी है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। जब आगे एक साधक की शक्ति बढ़ती है तो वो सूर्य त्राटक भी कर सकता है, चंद्र त्राटक भी कर सकता है। चंद्र त्राटक करने का ये होता है कि पूर्णिमा या पूर्णिमा से 5 दिन पहले या 5 दिन बाद जब चंद्रमा की शक्ति बहुत असीम होती है तो आप रात के समय स्पेशली पूर्णिमा से 1 दिन पहले, पूर्णिमा वाले दिन और पूर्णिमा के 1 दिन बाद अगर आप चंद्रमा को देखते हैं, उसका ध्यान करते हैं तो आपको धीरे धीरे करके चंद्रमा के चारों तरफ भी एक ऑरा महसूस होगा, एक प्रकाश महसूस होगा। धीरे धीरे करके आप देखेंगे तो इसमें आपको लाल नीला इस तरह के हल्के हल्के रंग भी नजर आएंगे जो कि चंद्रमा का एक ऑरा है जो कि चारों तरफ एक्सपैंड होता है। लोग आजकल अक्सर बात करते हैं आज ब्लड मून है, आज रेड मून है और आज ये वाला मून है, तो वो बेसिकली ऑरा के अंदर जो चंद्रमा से कलर निकलते हैं और कौन सा कलर प्रीडोमिनेंट है उसके बेसिस पर ही डिसाइड होता है। बहुत सारी नेटिव सभ्यताओं ने जब देखा कि चंद्रमा के अराउंड ये कलर है तो उन्होंने कहा आज ब्लड मून है, आज रेड मून है। तो हम कई बार बिना लॉजिक समझे बस इन चीजों को फॉलो करते हैं। अभी तो बेसिकली ये है कि आज चंद्रमा का जो ऑरा है उसमें जो पर्टिकुलर कलर है वो ज्यादा प्राकट्यमान है और अगर हम उस दिन इस प्रकार की साधना करें या किसी इस प्रकार की मैनिफेस्टेशन करें तो बहुत सरलता से हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आज जो चंद्रमा का ऑरा है उससे आपके शरीर में जो हार्मोन जनरेट होंगे, उससे आपके अंदर जो न्यूरो सेल्स जनरेट होंगे, उससे बॉडी का जो आकर्षण बढ़ेगा, मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, उससे आप एक पर्टिकुलर चीज को अगर सिद्ध करते हैं तो आप जल्दी सिद्ध कर पाएंगे। तो इस तरह से चंद्र त्राटक भी है, सूर्य त्राटक भी है। सूर्य त्राटक मैं नहीं रेकमेंड करती बहुत सारे लोगों को करने के लिए, क्योंकि इसके लिए अगर आप इसको ढंग से ना करें और सूर्य को डायरेक्टली देखें तो बहुत लोगों की आंखें खराब भी हो सकती हैं। अभी तो सूर्य त्राटक को भी करने का ऐसा ही मेथड होता है कि आप सूर्य को डायरेक्टली ना देखें बल्कि उसकी परिधि को देखें, और धीरे धीरे जब आप उसकी परिधि को देखते हैं तो धीरे धीरे उसमें भी आपको रंग नजर आते हैं। परंतु अभी के लिए अगर हम बात करें कि हमें पढ़ाई में अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, अपनी मेमोरी को और तेज करना है और हमने अपनी याददाश्त को और बढ़ाना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बढ़ाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बढ़ाना चाहते हैं, अपने विजन को और तेज करना चाहते हैं और चश्मा उतारना चाहते हैं या चश्मा हमें ना लगे तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इस प्रकार की विधियां करना चाहते हैं तो हम बिंदु त्राटक तक भी अगर सीमित रहते हैं तो हम उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और भी चीज है, माँ सरस्वती जो कि विद्या और नॉलेज की देवी है, उनका जो बीज मंत्र है आईम, अगर हम इसका भी उच्चारण करते हैं तो ये हमारे जीवन में हमारी बुद्धि को बढ़ाता है। माँ सरस्वती हमें विद्या भी देती है, सुंदरता भी देती है, सौंदर्य भी देती है, आकर्षण भी देती है, धन भी देती है। तो केवल हम माँ सरस्वती को ज्ञान से नहीं जोड़ते, हाँ ज्ञान की देवी केवल माँ सरस्वती है। तो अगर आप माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और उनकी एक फोटो को बच्चे की स्टडी टेबल के सामने लगाते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि बच्चा पढ़ाई में और ज्यादा सुदृढ़ हो रहा है, आपको उसको कहना नहीं पड़ रहा अभी तो वो स्वयं ही पढ़ना चाहता है। आईन के मंत्र का उच्चारण करने से बच्चे के अंदर न केवल खुद से मंशा जागती है, वो मोटिवेट होता है, अभी तो वो जो भी पढ़ता है वो उसकी मेमोरी में रिटेन रह सकता है। माता पिता भी चाहें तो वो बच्चे के बिहाफ पे आईन का उच्चारण कर सकते हैं, माँ सरस्वती के बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप किसी डिवाइस पे माँ सरस्वती के किसी मंत्र को लेकर अगर चला दें और घर में लगातार 3-4 घंटे उसको चलाए तो भी आप महसूस करेंगे कि आपके घर में जो प्रोग्रामिंग हो गई है, आपके घर के जो ऑरा के अंदर एक प्रोग्रामिंग हो गई है, वो भी ऐसी हो जाएगी कि बच्चा जब उस स्थान पे बैठेगा जहां वो मंत्र चल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली पढ़ना चाहेगा और उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा और चीजों में नहीं जाएगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के आने से या बहुत सारी और चीजों के आने से बहुत आसान हो गया है डिस्ट्रैक्ट होना, डोपामाइन रश हमें बहुत जल्दी होता है। तो आप अपने घर को ऐसी ऊर्जाओं से प्रोग्राम कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जियोपैथिक प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है कि आप घर के एक पर्टिकुलर कॉर्नर में अगर किसी प्रकार के मंत्र को लगातार बजाते जाते हैं तो घर का वो हिस्सा उस प्रकार की एनर्जी से प्रोग्राम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर के अंदर की जो तरंगे हैं वो सरल होनी चाहिए। तो दोस्तों एक और भी बात है कि कई बार बच्चे बेड पे बैठ के पढ़ लेते हैं या कहीं और पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक प्रॉपर स्टडी टेबल रखें या एक प्रॉपर स्थान बनाएं जहां पर पढ़ाई होनी चाहिए, उसमें से भी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट ये जो डायरेक्शन है ये बेस्ट होती है बच्चों के पढ़ने के लिए। या आप भी अगर अपॉर्चुनिटी सीख करते हैं, आप भी अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, अगर आप कोई कंपिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या जॉब में फर्दर एक्सेल करना चाहते हैं तो आप और पढ़ाई कर रहे हैं, तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट इन स्थानों पर अगर आप अपना स्टडी टेबल बनाते हैं या अपने एक पढ़ाई का कोई भी स्थान बनाते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि आप उसी कोर्स को बहुत जल्दी कर पा रहे हैं, अपने सिलेबस को जल्दी कवर कर पा रहे हैं। अगर आप कोई येलो कलर का पिरामिड उस स्थान पर रखते हैं तो भी आप जल्दी पढ़ाई कर लेंगे, अपने सिलेबस को जल्दी खत्म कर लेंगे और आपकी ग्रेस्पिंग पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों हरा रंग हमारे ब्रेन के लिए और हमारी आईज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। हरा रंग हीलिंग का कलर भी है, इसीलिए अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे या पुराने हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे ज्यादा करके व्हाइट और ग्रीन का ही प्रयोग किया जाता है। इवन दीवारों पर भी हल्के हरे रंग का प्रयोग होता था, पहले दीवारें हरे और व्हाइट कलर की होती थी, हॉस्पिटल्स में जो बेड हैं, शीट्स हैं, वो ज्यादा करके व्हाइट ग्रीन यही कॉम्बिनेशन यूज किया जाता था। इसके पीछे का कारण सिद्धांत ये है कि जो हरा रंग है वो एक हीलिंग कलर है, उससे बॉडी की हीलिंग जल्दी होती है। ये भी कहा जाता है कि जब आप सुबह उठिए तो आप घास पर चलिए नंगे पैर, क्योंकि जब आपका पैर है वो एक तरह का रिमोट कंट्रोल है, जब आप नंगे पैर घास पर चलते हैं तो उससे जो ओस की बूंदों का एक शीतल प्रभाव पड़ता है वो डायरेक्टली आपके ब्रेन पर भी जाता है, क्योंकि आपके शरीर का जो पूरा स्नायु तंत्र है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जब आप चलते हैं तो वो आपके ब्रेन को भी सुदृढ़ करता है, आपके ब्रेन में इस तरह के मैसेजेस पहुंचते हैं, आपके ब्रेन को शीतल करता है, रिलैक्स करता है, और जितना ज्यादा आप रिलैक्स होंगे उतना ही ज्यादा आपकी मेमोरी पावर और बेटर होगी, आपकी ग्रास्पिंग स्किल्स और बेटर होंगी, आपका विजन बेटर होगा, आपका ऑक्युलर स्ट्रक्चर भी बेटर होगा, आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी बेटर होगा। तो अब आप अगर नंगे पैर घास पर चलते हैं तो आपकी आईज बेटर होंगी और आपका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बेटर होगा, और हरे रंग में अपने आप में भी बहुत ज्यादा चमत्कारी शक्तियां हैं। जब आप ग्रीन कलर को देखते हैं, उसकी जो वेवलेंथ है वो डायरेक्टली जब आपकी आईज से आपके बॉडी को हिट करती है तो आपके ब्रेन में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं जो कि आपके ब्रेन को शार्प करते हैं। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एक लिमिट के बाद नहीं पढ़ पा रहे, तो एक तो आप 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए और दूसरा एक बड़ी सी शीट जो कि ग्रीन कलर की हो उसको आप कहीं पर भी अपने टेबल पर या अपनी दीवार पर पेस्ट कर दीजिए और आप उस कलर को लगातार देखिए। जब आप उस कलर को लगातार देखेंगे तो धीरे धीरे करके आपके ब्रेन सेल्स और ज्यादा एक्टिवेट होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो एक्सपैंड होंगे और आप अपने अंदर और ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। अगर आप लगातार ड्रेन हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो ग्रीन कलर उस स्ट्रेस को भी हील करता है, आपको स्ट्रेस से बाहर आने के लिए भी इंकरेज करता है। और आपके अंदर अगर बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल जनरेट हो रहा है जो कि एक स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, या आपके अंदर एड्रेनल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जो कि इवेंचुअली बॉडी को ड्रेन करता है, तो जब आप हरा कलर देखते हैं तो ये जो हार्मोन्स हैं ये कम होने लग जाते हैं या इनका निकास बॉडी से जल्दी हो जाता है। और ये भी आपको इंकरेज करते हैं कि जिस तरह आप फोकस करना चाहते हैं या जिस तरह आप ध्यान लगाना चाहते हैं, आप इजिली और जल्दी ध्यान लगा पाते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ डायरेक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनको निकासी की डायरेक्शंस या डिस्पोजल की डायरेक्शंस माना जाता है। मतलब यहाँ पर आप कुछ भी प्रोडक्टिव मत करिए, यहाँ पर आप बाथरूम बना सकते हैं या यहाँ पर आप कुछ ऐसा सामान रख सकते हैं जो कि आपको रोजमर्रा की लाइफ में नहीं चाहिए, ये डायरेक्शंस भारी हो सकती हैं। यहाँ पे आप डिस्पोजल के आइटम्स रख सकते हैं और यहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं रखना चाहिए, जैसे कि साउथ साउथ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। आप इन डायरेक्शंस में कभी भी अपनी किताबें या अपनी कोई भी प्रोडक्टिव चीज मत रखिए, क्योंकि अगर आप वहां पे कुछ भी प्रोडक्टिव रखते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी रखते हैं, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई से भागता है या मन चुराता है। अगर आपने बच्चे की स्टडी टेबल नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में रख ही ली, मतलब उत्तर उत्तर पूर्व या पूर्व में रख ही ली, अपॉर्चुनिटीज भी आप उसके लिए और आ रही है, वो मोटिवेटेड भी फील करता है, परंतु उसका स्कूल बैग ये जो बाकी दो डायरेक्शंस मैंने बताई हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट, इसमें पड़ा हुआ है, तो वो मोटिवेटेड फील करेगा, कुछ देर पड़ेगा, फिर वो महसूस करेगा कि वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहा। तो वहां पर अगर आपने बच्चे की स्कूल की एकेडमिक पुस्तकें रखी हैं या और भी कोई पुस्तकें रखी हैं या स्कूल बैग रखा है या और स्टडी से रिलेटेड कुछ भी रखा है, तो वहां से उस चीज को हटा दीजिए। उस डायरेक्शन में केवल आप वो सामान रखिए जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रोजमर्रा में आप इस्तेमाल नहीं करते, जो एक स्टोर हाउस की तरह होता है, वहां पे वो सामान रख सकते हैं, उसको भारी कर सकते हैं, उस पर आप हैवी आइटम्स रख सकते हैं, लोहे का कुछ सामान रख सकते हैं, परंतु किसी भी प्रोडक्टिव आइटम को जो आपको चाहिए और जिससे आपके बच्चे का करियर बनता है, फ्यूचर बनता है, आप उन डायरेक्शंस पर अकेडमिक चीजें मत रखिए, पढ़ाई से रिलेटेड चीजें मत रखिए। आशा करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, आपके मन में भी कोई किंतु परंतु बाय हैं हमारे धर्म से रिलेटेड, हमारे रीति रिवाज से रिलेटेड, तो प्लीज आप हमें डीएम कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी डॉक्टर शीशम अग्रवाल के नाम से। रेड एफएम पॉडकास्ट पेज पर आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। फेसबुक पर मैं आपको शीशम बंसल के नाम से मिल जाऊंगी। रेड एफएम पॉडकास्ट पेज पर आप फेसबुक पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक्डइन पर हम आपको मिल जाएंगे, वहां पर आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं, अपना प्रोत्साहन हमें भेज सकते हैं। बहुत सारे लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर हम आपको मिल जाएंगे, गाना, स्पॉटिफाई। रेड एफएम का अपना एक ऐप है जहां पर लगातार ये पॉडकास्ट प्रसारित होते ही जाते हैं, इनके एपिसोड्स हर हफ्ते अपलोड होते हैं। तो न केवल आप हमारा पॉडकास्ट सुनिए, अभी तो ऐसे बहुत सारे और भी पॉडकास्ट हैं जो लगातार आ रहे हैं और बहुत सारी प्रोग्रेसिव नॉलेज को और बहुत सारी रेलेवेंट नॉलेज को आपके समक्ष लाते हैं। उनको सुनिए, उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे उनको जरूर शेयर करिए, ताकि बहुत सारे और भी लोग जो आपसे कनेक्टेड हैं उनकी नॉलेज में विकास हो और ना केवल आपका बल्कि आपके समुदाय से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं उन सबकी आसपास एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आए, उनका भला हो। और जहां पर भी आपको लगता है कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो इस ज्ञान को जरूर भेजिए, ताकि उनके जीवन में भी परिवर्तन आए, उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आए, उनकी मानसिकता में परिवर्तन आए और चाहूं और एक सकारात्मकता का एनवायरमेंट बन जाए। मेरी बहुत सारी पुस्तकें अमेज़न पर अवेलेबल हैं, ओम ब्रह्मांड का नाद, ओम मेरे फिक्रे, मेथड टू मैडनेस, ओम इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। मेरी अभी एक लेटली और पुस्तक आई है हाउ या कैसे के नाम से, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। बहुत सारे रीति रिवाज जो हम कर रहे हैं वो हमें किस प्रकार से करने चाहिए, स्वास्थ्य किस प्रकार से बनाना चाहिए, आप घर में हवन स्वयं कैसे कर सकते हैं, आप गृह प्रवेश स्वयं घर में कैसे कर सकते हैं, और इस तरह की और बहुत सारी रोचक जानकारी जो आपकी किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी को खत्म कर देगी, आप स्वयं बहुत कुछ खुद ही कर पाएंगे, और अगर आप नहीं भी करते तो एटलीस्ट आप उसके ज्ञाता तो बन जाएंगे। तो इसी तरह से आपको और ज्यादा प्रशस्त करने के लिए, और ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आपके ज्ञान को और ज्यादा उकेरने के लिए हम और इस प्रकार की रोचक जानकारी आपके समक्ष लाते रहेंगे और ज्यादा ज्ञानवर्धन आपका करते रहेंगे। और इसी आशा के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे हमारे अगले एपिसोड में। अब तक के लिए धन्यवाद।
यू वर लिसनिंग टू व्हाट इज द लॉजिक बाय शीशम अग्रवाल।